नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपका। दोस्तों, मैं हूं मुनीष शर्मा
और मैं हूं साथ में विनीता।
आज हम आपके समक्ष 1 से 15 जून का अंक लेकर हाजिर हैं। दोस्तों, इस अंक में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े 9 मई के बाद के घटनाक्रम और पूरे ऑपरेशन में मिली सफलता पर विशेष रिपोर्ट है और साथ ही बीते 11 वर्ष में भारत की सैन्य शक्ति में आए बदलाव को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों, बीते 11 वर्ष में भारत सिर्फ सामरिक रूप से सशक्त नहीं हुआ बल्कि सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से भी परिवर्तनकारी गाथा लिखी गई है। इन 11 वर्ष में भारत ने वो किया है जो दिखाता है कि भारत रुकने, झुकने और थमने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 11 साल अब पूरे हो रहे हैं। तब ये जानना स्वाभाविक है कि कैसे धारणा और सोच में बदलाव लाकर देश ने दशकों से लंबित उन समस्याओं का समाधान किया जो किसी भी राष्ट्र के विकसित होने के मार्ग में बाधक हो सकती हैं। बीते 11 वर्ष में 11 ऐसे युगांतरकारी निर्णयों पर ही न्यू इंडिया समाचार का ये विशेष अंक आपके समक्ष है और साथ ही सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बनी ऐसी 11 योजनाएं भी इस आवरण कथा का हिस्सा बनी हैं।
पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रही है, तो इसके मॉडर्न वॉरफेयर यानी युद्ध के तरीके भी बदले हैं। हमने अक्सर सुना है कि युद्ध के बीच उसी सेना का दबदबा होता है जिसकी वायुसेना सबसे ताकतवर होती है। वायुसेना के ताकतवर होने के साथ ही अब एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा मजबूत आयाम है जो युद्ध के मैदान में न सिर्फ आपका दबदबा स्थापित करता है बल्कि प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ आपको निर्णायक बढ़त दिलाता है। भारत आज उन देशों में शामिल है जिनका एयर डिफेंस सिस्टम उसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की पंक्ति में खड़ा करता है। पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के साथ दुनिया ने भारत की इस ताकत को भी देखा जब प्रतिद्वंदी के आत्मघाती ड्रोन के साथ हाई स्पीड मिसाइलों ने भारत की सीमा में घुसते ही दम तोड़ दिया। भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को तबाह ही नहीं किया बल्कि पाकिस्तान के हमले की कोशिश को भी नाकाम किया। साथ ही उसके सैन्य ठिकानों को नष्ट कर ये स्पष्ट संदेश भी दे दिया कि अब भारत सिर्फ अपनी हवाई सीमाओं की रक्षा नहीं करता बल्कि उस पर नियंत्रण रखता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के डिफेंस सिस्टम ने दुश्मनों के हमलों को रोकने में कामयाबी हासिल की तो ड्रोन और युद्धक विमानों से छोड़ी हुई मिसाइलों ने सीमा पार के ठिकानों को बिना किसी रोक टोक के मिट्टी में मिलाने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी तकनीकों ने भी अपनी ताकत दिखाई। भारत के इस सैन्य ऑपरेशन की सटीकता और सफलता 11 साल की बेहतरीन रणनीति के साथ रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर लक्षित नीति का परिणाम है।
प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ नीतियों की घोषणा नहीं करते, वो उन्हें मूर्त रूप देते हैं और इन 11 वर्ष में उन्होंने ऐसी परियोजनाओं पर विशेष फोकस किया जो दशकों से लटकी हुई थीं। असम के बोगीबील ब्रिज की आधारशिला 1997 में रखी गई थी। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उसका काम शुरू कराया लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद ये ब्रिज एक बार फिर लटक गया। अरुणाचल और असम के लाखों लोग परेशान होते रहे। फिर वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली तब इस परियोजना पर फिर से काम शुरू हुआ और सिर्फ 4 वर्ष में ही वो पूरा हो गया। और ऐसे ही केरल में कोल्लम बाईपास रोड प्रोजेक्ट भी एक उदाहरण है। ये 1972 से अटका हुआ था। लगभग 5 दशक बाद इस काम को भी वर्तमान केंद्र सरकार ने पूरा किया। इस पुल का उद्घाटन करते हुए 15 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, जब हम पुल और सड़कें बनाते हैं तो केवल नगरों और गांवों को नहीं जोड़ते, हम आकांक्षाओं के साथ उपलब्धि, आशा के साथ अवसर और उम्मीद के साथ खुशहाली को जोड़ते हैं। मात्र 13.5 किलोमीटर लंबा ये बाईपास केरल के अलापुझा और तिरुवनंतपुरम के बीच की दूरी को कम करता है लेकिन ये फासला मिटने में 5 दशक का समय लगा। केंद्र और राज्य सरकार के इस संयुक्त उपक्रम का प्रस्ताव सबसे पहले 1972 में रखा गया था। 2015 में इस प्रोजेक्ट की धीमी रफ्तार पर केंद्र सरकार की नजर पड़ी और तेजी से काम करते हुए 2019 में इसका उद्घाटन कर दिया गया।
इसी तरह नवी मुंबई एयरपोर्ट पर भी 1997 से चर्चा शुरू हुई थी, 2007 में इसे मंजूरी मिली, लेकिन इस पर काम नहीं किया। केंद्र की वर्तमान सरकार ने इस परियोजना को पूरा किया और अब जल्द ही नवी मुंबई एयरपोर्ट से कॉमर्शियल फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएगी। हाल ही में तमिलनाडु के रामेश्वरम में ऐतिहासिक पंबन ब्रिज का लोकार्पण हुआ। लगभग 125 साल पहले अंग्रेजों ने वहां एक पुल बनवाया था। उस पुल ने इतिहास देखा, उसने आंधियां सही। एक बार सुनामी ने उस पुल को बहुत नुकसान पहुंचाया। सालों तक देश इंतजार करता रहा, लोग मांग करते रहे, लेकिन पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के समय नए पंबन ब्रिज के लिए काम शुरू हुआ और अब देश को अपना पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल सी ब्रिज मिल गया। चंद्रयान 3 ने 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला देश बना। अंतरिक्ष क्षेत्र के इतिहास का ऐतिहासिक क्षण बना, क्योंकि भारत वहां पहुंचा जहां अब तक दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहाँ रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश पहले जितना पैसा खर्च करता था, आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, 6 गुना ज्यादा। आज भारत में हो रहे इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। आप उत्तर में जाएंगे तो चिनाब ब्रिज जैसा निर्माण देखकर लोग हैरान है। पूर्व की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल की सेला टनल, असम का बोगीबिल ब्रिज आपका स्वागत करते हैं। पश्चिम भारत में आएंगे तो मुंबई में समंदर पर बना अटल सेतु नजर आएगा। सुदूर दक्षिण में देखेंगे तो पंबन ब्रिज मिलेगा, जो अपनी तरह का देश का पहला ब्रिज है।
बीते 11 वर्ष में भारत ने न केवल अपनी अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना किया, बल्कि तेज गति से वृद्धि का कारण आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बीते 11 साल में रेल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, पानी, गैस, पाइपलाइन और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट करीब 6 गुना बढ़ाया गया। और इस विकास के पीछे एक सोच है, जब भारत का प्रत्येक क्षेत्र आपस में जुड़ता है तो विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग मजबूत होता है।
नया संसद भवन और सेंट्रल विस्टा आत्मनिर्भर भारत की बुनियादी सोच का दर्पण बना है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां देश के भविष्य की दिशा तय होती है। पुराने संसद भवन को 100 साल पहले बनाया गया था। इन 100 साल में आवश्यकताओं के अनुरूप इसका कई बार मरम्मत और जीर्णोद्धार किया जा चुका है। संसद का नया भवन दशकों से बनी उस धारणा को भी तोड़ गया, जिसके बारे में कहा जाता था महिला आरक्षण बिल पर सहमति संभव नहीं है। इस नए भवन में पहला बिल महिलाओं को संसद विधानसभा में 33% आरक्षण देने के निर्णय के साथ पारित हुआ। इसी तरह 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जो ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर की ओर बढ़ते भारत के कदम का परिचायक है। देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रयासरत और कृतसंकल्पित रहे हैं। उन्होंने जैसे ही दूसरी बार केंद्र में सत्ता की बागडोर संभाली, वैसे ही भारत की शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए नई राष्ट्रीय नीति 2020 को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। ये 1967 और 1986 के बाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
साथियों, भारत के यूनिवर्सिटी कैंपस आज नए डायनेमिक सेंटर्स बन रहे हैं। ऐसे सेंटर्स जहां युवा शक्ति ब्रेक थ्रू इनोवेशन को ड्राइव कर रही है। हाल ही में हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग में भारत ग्लोबल लेवल पर सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेड रहा। 125 देशों के 2000 इंस्टीट्यूशन में से 90 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज भारत से थी। 2014 में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के केवल 9 इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज थी। 2025 में ये संख्या 46 हो चुकी है। दुनिया के टॉप 500 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भारतीय संस्थानों की संख्या भी पिछले 10 वर्षों में तेजी से बढ़ी है। अब विदेशों में हमारे प्रमुख संस्थानों के कैंपस खुल रहे हैं। अबुधाबी में आईटी दिल्ली, तंजानिया में आईटी मद्रास, इसके कैंपस खोले गए हैं। दुबई में आईएम अहमदाबाद का कैंपस खोले जाने की तैयारी है।
रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मंत्र हो या फिर स्पीड स्केल की बात, बीते 11 वर्ष में ये विकास की गति और निर्णायक नेतृत्व का पर्याय बन चुका है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के बाद इस दृष्टिकोण को गति देने, जल कल्याण और राष्ट्रहित की नीति निर्णय में प्रधानमंत्री मोदी जुटे हैं। तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिन में ही 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की मंजूरी के साथ प्रगति का नया अध्याय लिख दिया गया। तीसरे कार्यकाल के शुरुआती 100 दिनों में ही भारत में 12 नए इंडस्ट्रियल शहर बनाने, 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी देने और 15 से ज्यादा नई मेड इन इंडिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यों को पूरा किया गया। शोध को बढ़ावा देने के लिए 1 ट्रिलियन रुपए का रिसर्च फंड बनाया गया है। इसी दौरान गरीब और मध्यम वर्ग के स्वास्थ्य से जुड़ा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। देश में 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, सबको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान योजना में शामिल करने का काम भी शुरू हो चुका है।
श्रोताओं, पहली बार 26 मई 2014, दूसरी बार 30 मई 2019 और तीसरी बार 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे हुए हैं। इस सरकार ने ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए जिसका इंतजार देश के नागरिकों को आजादी के समय से, या यूं कहें कि दशकों से था। इस परिवर्तनकारी सुधार की गाथा को लिख केंद्र सरकार ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को भारत के लिए उत्कर्ष का दशक बना दिया है।
श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है और इसका एक्स हैंडल है NISPIB India। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं जिनका हमें रहता है हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा
और मैं विनीता।
दीजिए इजाजत।
नमस्कार।